नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत और ग्रीस ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। व्यापार, रक्षा, शिपिंग और कनेक्टिविटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। भारत और थाईलैंड के विदेश मंत्रियों ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय संबंधों, बहुपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की। कश्मीर के अनंतनाग जिले में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। देश भर में आज गोवर्धन पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। और क्रिकेट में भारत ने मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत, मध्य पूर्व, यूरोप, आर्थिक गलियारे और पश्चिम एशिया के विकास सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने व्यापार, रक्षा, शिपिंग और कनेक्टिविटी सहित द्विपक्षीय सहयोग के कई क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। बातचीत के दौरान श्री मित्सोताकिस ने भारत में आम चुनावों के बाद श्री मोदी को उनके पुनः निर्वाचित होने पर बधाई दी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल शाम नई दिल्ली स्थित रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने तैयारियों पर यात्रियों के लिए की गई विशेष सुविधाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। रेल मंत्री ने स्टेशन पर रेलगाड़ियों की प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों से बातचीत भी की। उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल और रेल अधिकारियों द्वारा यात्रियों की सुविधाओं के लिए की गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी में आनंद विहार, नई दिल्ली और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों से विशेष रेलगाड़ियों का संचालन हो रहा है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने आकाशवाणी समाचार को बताया है कि त्योहारों को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे द्वारा दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही है। दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने युवाओं से प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2022-23 के लिए आवेदन करने की अपील की है। ये पुरस्कार 15 से 29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों तथा संगठनों की विकास और समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य तथा योगदान के लिए दिए जाते हैं। राष्ट्रीय युवा पुरस्कारों के लिए आवेदन गृह मंत्रालय के पुरस्कार पोर्टल के जरिए आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन 15 नवंबर तक की जा सकती है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल नाम वापस लेने के बाद अब चुनाव मैदान में कल 1211 उम्मीदवार रह गए हैं। 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 2 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में होगा और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर है। राज्य में एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। झारखंड और महाराष्ट्र में मतगणना 23 नवंबर को की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रांची में पार्टी नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कल पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला और ढालभूमिगढ़, हजारीबाग जिले के बरकट्टा और चतरा जिले के सिमरिया में चुनावी रैलियों को संबोधित भी करेंगे। केरल में उपचुनावों के लिए प्रचार अभियान समाप्त होने में मात्र 10 दिन बचे हुए हैं। राजनीतिक दल मतदाताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए जोरदार संघर्ष में लगे हुए हैं। 3 निर्वाचन क्षेत्रों वायनाड संसदीय क्षेत्र और चेलाक्करा आरक्षित और पलक्कड़ के 2 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार अभियान पहले से ही जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार ने राज्य के युवाओं के साथ धोखा किया है। भाजपा के झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने रांची में कहा है कि अगर भाजपा सत्ता में आएगी तो पहले कैबिनेट बैठक में 2,87,000 सरकारी पदों को भरने का फैसला लिया जाएगा। दूसरी ओर झारखंड मुक्त मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि प्रदेश के लोग अपने मतदान से उनके काम का मूल्यांकन करेंगे। भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थाईलैंड के विदेश मंत्री मैरिस सांग्याम पोंगसा ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा है कि रॉयल कथीना समारोह के लिए थाईलैंड के विदेश मंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का उदाहरण है। उन्होंने भारत थाईलैंड संबंधों, बहुपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की। श्री सांग्याम पोंगसा बृहस्पतिवार को नई दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने कल नई दिल्ली में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के सदस्यों के साथ विचारों का आदान प्रदान किया और धम्म की एशियाई शताब्दी की ओर विशेष स्तंभों पर ध्यान दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाने में थाईलैंड और भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजराती नववर्ष के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कामना की है कि यह नववर्ष लोगों के जीवन में खुशियां, सफलता और समृद्धि लेकर आएगा। गुजराती नववर्ष बेस्तु वर्ष के रूप में भी लोकप्रिय है और यह पूरे राज्य में परंपरागत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना भी की जा रही है। उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल की सक्रिय भागीदारी के लिए साथ G20 बैठक में आपदा जोखिम कम करने के बारे में पहली मंत्र स्तरीय घोषणा पर आम सहमति बन गई है। आज जारी आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। आपदा जोखिम कम करने की G20 कार्यकारी समूह की मंत्र स्तरीय बैठक ब्राजील के बेलेम में 30 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक हुई। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर कल से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री ब्रिस्बेन जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन करेंगे। वे कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेन्नी वोंग के साथ विदेश मंत्री स्तरीय रूपरेखा संवाद की 15वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासकीय निकाय की 392वीं बैठक जिनेवा में हो रही है। यह बैठक 28 अक्टूबर को शुरू हुई थी और 7 नवंबर तक चलेगी। बैठक के दौरान श्रम और रोजगार सचिव सुमित डावड़ा ने गरीबी के सभी आयामों के बारे में महत्वपूर्ण प्रयासों में जीवन स्तर सुधारने की भारत की प्रतिबद्धता की जानकारी दी। कश्मीर घाटी में अनंतनाग जिले के हलकन गली क्षेत्र में आज दोपहर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। श्रीनगर स्थित चिनार कोर की सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार क्षेत्र में कुछ आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने कार्रवाई शुरू की। हलकन गली के निकट संदिग्ध गतिविधि देखी जाने के बाद सुरक्षा बलों ने उन्हें चुनौती दी। इसके बाद आतंकियों ने जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए। इन आतंकियों की अभी पहचान नहीं हुई है। अंतिम समाचार मिलने तक सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी थी। इस बीच श्रीनगर शहर के खन्यार क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी जारी रहने की खबर है। क्षेत्र में सुरक्षा बलों की घेराबंदी और खोजबीन के बाद मुठभेड़ शुरू हुई। मध्य प्रदेश में आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार ने जिला स्तर पर गौ पूजा कार्यक्रम की आयोजन किए हैं। इन कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत के कृष्णा वर्मा ने कल अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। हालांकि स्वर्ण पदक की दौड़ में शामिल 5 अन्य भारतीय मुक्केबाज अपने अपने फाइनल में हार गए। आज रात निशा, सुप्रिया देवी थोकचोम और पार्थवी गरेवाल सहित 5 और महिला मुक्केबाज स्वर्ण पदक के लिए स्पर्धी करेंगे। और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे 3रे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के 2रे दिन न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में अंतिम समाचार मिलने तक 8 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।